समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Karishma, hello and good day everybody. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today, of course, is my co-host Karishma. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Polling underway peacefully for assembly elections in Assam, Keralam and Union Territory of Puducherry.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा।
इंडियन फ्लैग्ड वेसल कैरिंग 15,400 टन्स ऑफ एलपीजी अराइव्स एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इन मुंबई।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के रक्षा अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की।
Indian women boxers clinch 3 gold medals in Asian Boxing Championships in Mongolia.
और आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
And now listeners, it's time for a segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about empowering women. Yes, and today we are talking about a powerful force driving India's growth, Nari Shakti, the strength and empowerment of women. India's development journey is deeply connected with how empowered its women are. When women rise, families prosper, communities grow stronger, and the nation moves forward. And recognizing this, the central government has placed women's empowerment at the heart of its agenda.
लेकिन ये समझना जरूरी है कि सशक्तिकरण सिर्फ एक बार का प्रयास नहीं है। भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, फिर भी संसद और राज्य विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी काफी कम है। उनकी भागीदारी बढ़ाने से नए नजरिए और ज्यादा समावेशीय नीति निर्माण सामने आ सकते हैं।
Prime Minister Narendra Modi has said that reservation for women in legislative bodies is a need of the hour to make Indian democracy more vibrant and participative. Expressing his thoughts in an op-ed, Mr. Modi said that any delay in bringing this reservation will be deeply unfortunate. He said that Parliament has been convened on the 16th of this month to discuss and pass an important bill that advances women's reservation.
एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है, मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं।
प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट इट इज इंपेरेटिव दैट द 2029 Lok Sabha elections and the assembly elections to the various states in the coming times are conducted with women's reservation in place. He said over the decades there have been repeated efforts to provide women with the rightful place in democratic institutions by the previous governments.
श्री मोदी ने कहा कि समितियां बनाई गई, बिल के मसौदे पेश किए गए, लेकिन वे कभी भी हकीकत नहीं बन पाए. उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में संसद ने उसी आम सहमति की भावना के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया.
हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए.
Prime Minister said that women constitute nearly half of India's population and their contributions to the nation are vast and invaluable. In his op-ed, Mr. Modi said that the reservation for women in legislative bodies is a reflection of the aspirations of crores of women across India, an affirmation of the principle that society progresses when women progress.
महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे हैं, चाहे वो विज्ञान और तकनीक से लेकर उद्यमिता तक हो, खेल से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला तक हो. उन्होंने कहा कि जब महिलाएं प्रशासन और निर्णय निर्माण में हिस्सा लेती हैं तो वे अपने साथ ऐसे अनुभव लेकर आती हैं जो शासन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं.
And this will lead to manifold benefits. First, greater representation ensures that issues affecting women like education, health care and safety receive the attention they deserve.
दूसरा, यह स्वयं लोकतंत्र को मजबूत बनाता है. जब विधित आवाजों को शामिल किया जाता है तो नीतियां अधिक संतुलित हो जाती हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं.
Yes, and another key benefit is empowerment. Reservation can encourage more women to step into leadership roles, breaking social barriers and inspiring future generations.
और इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा देकर देश न केवल लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ता है बल्कि एक अधिक संवेदनशील और समावेशीय शासन व्यवस्था का भी निर्माण करता है.
On Women's Reservation Bill, Nari Shakti awardee Bimla said that this is an extremely important initiative. She said that Prime Minister Narendra Modi has made consistent efforts with a focus on women's dignity and respect since he assumed office. Ms. Bimla said that this initiative has reached the stage of political empowerment, marking an important step towards ensuring women's participation from home to parliament.
पद्म पुरस्कार से सम्मानित लीबिया लोबो सरदेसाई ने कहा कि यह पहल निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक अवसर साबित होगी. मीडिया से बात करते हुए सुश्री सरदेसाई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इतनी प्रगति करने में 27 साल लग गए और अभी भी इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली पीढ़ियों को इससे लाभ होगा.
I'm very happy about it, only sad that it has taken 27 years to make so much headway. It is not even complete yet. It's definitely a boon for women.
So to conclude our discussion today in a Dateline section on empowering women, well, Karishma, government's efforts have led to remarkable progress in women's empowerment, and the number of female police personnel has increased significantly, and women athletes have brought laurels to the country with their remarkable achievements. Enrollment of women in the fields of science, technology, engineering and mathematics, STEM, has also witnessed significant growth.
और महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी मानने के बजाय उन्हें सशक्तिकरण के वाहक के रूप में प्रस्तुत करके सरकार भारतीय महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में सफल रही है. भारत की महिला सशक्तिकरण दृष्टिकोण अब एक व्यापक और जीवन चक्र आधारित रूपरेखा में विकसित हो गया है जो जन्म से लेकर आजीविका और नेतृत्व तक महिलाओं की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है. स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कौशल, वित्तीय समावेशन, दैनिक जीवन में गरिमा तथा सुरक्षा और संरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सरकार की लक्षित पहलें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि वास्तविक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके.
ऐसी धड़कन है, धड़कन है, ऐसी धड़कन है, ऐसी धड़कन है.
Yes, and Women and Child Development Minister Annapurna Devi inaugurated the 8th edition of Poshan Pakhwara 2026 in New Delhi today. And the theme for Poshan Pakhwara is maximizing brain development in the first 6 years of life. This recognizes that early childhood, particularly the first 1,000 days, is critical for brain development, physical growth and overall well-being. Scientific evidence indicates that over 85% of brain development occurs by the age of 6, underscoring the importance of optimal nutrition, responsive caregiving and early learning. And during the Pakhwara, activities will be organized across states and union territories through Anganwadi centers with participation from mothers, caregivers, families, community institutions and local bodies.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। सबसे पहले बात अंडमान निकोबार की करेंगे, जहां पर प्रशासन के पर्यटन विभाग की ओर से सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से द्वीप समूह में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सर्फिंग चैंपियनशिप लिटिल अंडमान प्रो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लिटिल अंडमान को भारत के उभरते सर्फिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार लिटिल अंडमान प्रो 2026 नामक राष्ट्रीय स्तर की सर्फिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता आज से 12 अप्रैल तक लिटिल अंडमान के बटलर बे तट पर आयोजित होगी। यह आयोजन न केवल द्वीपों में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत में सर्फिंग के नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में लगभग 86 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सर्फर भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला ओपन सर्फिंग शॉर्टबोर्ड तथा स्टैंड अप पैडल बोर्ड जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल होंगी। इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध जज श्री रोरी साइक्स को हेड जज नियुक्त किया गया है। यह आयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को एक उभरते हुए सर्फिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह पर्यटन और जल क्रीड़ाओं के क्षेत्र में नए अवसर भी प्रदान करेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
Prime Minister Narendra Modi in his recent Mann Ki Baat program on Akashvani on the 28th of last month talked about preservation of manuscripts through Gyan Bharatam mission by sharing the same on Gyan Bharatam mobile application. One of the experts, Amit Kumar Rana, who is preserving manuscripts in Gurmukhi, was also named by the PM during the program. Our Jalandhar correspondent has talked to him. Let's listen to what he had to say.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 29 मार्च के मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश की महान संस्कृति एवं प्रसिद्ध विरासत को दर्शाती मनुस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन से ज्ञान भारतम मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जुड़ने की बात कही गई थी। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा औरों के साथ साथ पंजाब के अमृतसर में बसे अमित सिंह राणा के बारे में भी जिक्र किया गया था, जो गुरुमुखी व अन्य कई भाषाओं की पांडुलिपियों का संरक्षण कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार प्रभाग जलंधर के साथ विशेष बातचीत में अमित राणा ने जहां मन की बात प्रोग्राम में अपने काम की सराहना पर खुशी जाहिर की, वहीं उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2006 में राष्ट्रीय अभिलेखागार से पांडुलिपि संरक्षण का कोर्स करने के बाद से इससे जुड़े हुए हैं।
मेरा नाम अमित सिंह राणा है और मुझे अत्यंत खुशी है कि मेरे काम की सराहना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात प्रोग्राम में की गई है। मैं उनका धन्यवाद।
कानपुर निवासी अमित राणा 2013 से अमृतसर में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ स्थित आतम पब्लिक स्कूल के पास 6000 से ज्यादा मनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो पंजाबी, संस्कृत, अरेबिक, तमिल, कन्नड़, पारसी और अन्य भाषाओं में हैं। श्री राणा ने स्कूल संचालकों को जहाँ ज्ञान भारतम मिशन से जोड़ा, वहीं इन पांडुलिपियों का संरक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की ज्ञान भारतम मिशन से जुड़ने की अपील को दोहराते हुए उन सभी लोगों को इस मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश की संस्कृति को डिजिटलाइज करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा सके। आकाशवाणी समाचार जलंधर से परिक्रमा के लिए मैं राजेश बाली।
गोवा के पणजी में आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन जोन 7 सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और विधानसभा अध्यक्ष गणेश गांवकर सहित कई राज्यों के वरिष्ठ विधायक मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए चलते हमारे पणजी संवाददाता के पास।
अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि गोवा पर्यटन, कला, संस्कृति और ऊर्जा की भूमि है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में विधायी संस्थाओं और विशेष रूप से युवा विधायकों की अहम भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन में आज युवा विधायकों की भूमिका पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जबकि कल व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ओम बिरला ने कहा कि तटीय राज्यों को एक दूसरे की बेहतरीन नीतियों से सीख लेनी चाहिए और लोकतंत्र की सफलता बढ़ते मतदान प्रतिशत से ही लगती है।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये तीनों प्रदेश कोस्टल इलाके के प्रदेश हैं और इसीलिए इन प्रदेश की चुनौतियां भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ इस प्रदेश के नेतृत्व ने समय समय पर देश के अंदर इन तटीय क्षेत्रों की चुनौतियों के साथ अवसर को बदलने का काम किया।
साथ ही उन्होंने तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने और विधायकों से नियमों की बेहतर समझ के साथ सार्थक संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी पणजी से निखिल उपाध्याय।
पोलिंग फॉर द असेंबली इलेक्शंस इज प्रोग्रेसिंग इन केरला and the state is on the way to make a voting process greener and more environmentally responsible. Extensive arrangements have been made across Kerala to strictly implement the green protocol at polling stations and distribution centres. The use of single-use plastic has been completely avoided, with steel utensils and glassware being introduced instead. Kudumbashri units are actively supporting these efforts in several districts, while common drinking water facilities have also been arranged. Special attention has been given to waste management as well. Separate bins have been installed at each polling booth for waste segregation, and the services of Harita Karma Sena are being utilized to ensure scientific disposal. Cleanliness at polling centers and surrounding areas is also being closely monitored under the guidance of election authorities and the Suchitva Mission. We have more from a correspondent from Thiruvananthapuram.
Awareness campaigns were carried out across districts in Kerala to promote both voter participation and adherence to green norms. Over the past 3 weeks, initiatives like Green Button campaign have been encouraging people to adopt eco-friendly practices during the election process. Several districts have introduced innovative measures. In Ernakulam, eco-friendly mobile phone pouches made from old clothes were distributed to voters. In Wayanad, cloth banners were used to spread environmental awareness. In Palakkad, rallies were organized as part of the campaign. In Thiruvananthapuram, green facilitation centers have been set up in all constituencies to ensure compliance with the protocol. Model green polling booths were prepared across district, with Kannur introduced specially themed eco-friendly booths. Green cafes by Kudumbashree units are functioning in various locations, and enforcement squads have been deployed to monitor compliance. Authorities have already conducted thousands of inspections and imposed fines for violation of the green protocol. Officials say the aim is to make election process a model for scientific waste management, environmental protection and public participation. Voters and political workers have been urged to cooperate in ensuring a clean and green election. Midhi M. Palaruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
The nation is remembering the valour and the supreme sacrifice of security forces today, as Shaurya Divas has been observed at Sardar Post in the border district of Kutch in Gujarat. And the day commemorates the extraordinary bravery displayed by the CRPF personnel during the 1965 India-Pakistan conflict. Our correspondent has filed this report.
On this occasion, senior officials and personnel of the CRPF will pay homage to the martyrs with a guard of honor, while tributes will also be offered through a band performance. It may be recalled that in April 1965, Pakistan attempted to capture Indian border areas under Operation Desert Hawk. At that time, CRPF units were deployed at Sardar and Tak Post in the run of Kutch. On the morning of April 9, an infantry brigade of around 3,500 Pakistani soldiers launches a sudden attack on this post. The CRPF personnel displayed exceptional courage and gallantry, successfully repulsing the attack and forcing the enemy to retreat. In the operation, 34 Pakistani soldiers were killed and 4 were captured alive. Ashraf Nathwani, Akashwani News, Bhuj.
In Jammu and Kashmir, the Jammu Municipal Corporation and Jammu Smart City Limited is preparing for the Swachh Tawi Mahotsav, a major celebration of local heritage and environmental care. The Mahotsav would be a three-day event starting on April 14th till April 16th at the 4th Tawi Bridge to mark Baisakhi. Organized with the coordination of Departments of Tourism and Information, the festival shall take place on the left bank of the Tawi Riverfront, which will be fully open to the public. And the festival aims to highlight JMC's ongoing work to make Jammu a cleaner and a more culturally active city under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0. And the festival offers a variety of activities for the public, including the Tawi Aarti and boating on the riverfront. And the event includes the Dangal, food stalls and authentic Dogri cuisine and handloom exhibits.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
एंड वी स्टार्ट ऑफ विद द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द वेल करिश्मा द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इंडियन वीमेन बॉक्सर्स डोमिनेटेड द इवेंट टुडे क्लिंचिंग 3 gold and 1 silver इन अ सिंगल डे इन मंगोलिया. रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा डिफीटेड नोमनदारी एन M. Galan of Mongolia 5-0 to clinch the gold in the 48 kg. Preeti Pawar overcame the challenge 5-0 against Chinese Taipei's Wang Xiaowei. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices fell around 1% today, snapping a 5-day rising streak. The Sensex declined 931 points to close at 76,632, while the Nifty dropped 222 points to settle at 23,775.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियां साहब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे. औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियां साहेब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था. औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई.
9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियां साहेब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए. आकाशवाणी समाचार देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है.
आज ही हम शायरे कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे. सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था. महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे.
सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी. इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ. वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी.
उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा, कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी.
उनकी कविता व्लोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी. उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा.
व्लोहा बागवानों, नौबहार उक्षान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल, तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल, तिथुई सामान पैदा कर.
उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया. एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शू सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है.
बुलबुल वनान चुपोषण गुलशन वतन शू सोनाई अंज अंज सफेद संगर देवार संग मरमर.
2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया. इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन.
आ- आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे।
शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया।
चांदनी चौक में एक गली है, जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेजों का राज था, दिल्ली में शोर मचा हुआ था, क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ।
उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं।
शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया।
शरण रानी ने दिव्य सरोद, मूल, प्राचीनता और विकास, इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति K.R. नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया।
कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन।
Yes, and we also remembering Francis Bacon, who passed on this day in 1626. He was an English philosopher and statesman who served as Attorney General and Lord Chancellor of England under King James I. Bacon argued for the importance of natural philosophy guided by the scientific method, and his works remain influential throughout the scientific revolution. And we're also remembering Philip Edward Thomas, who passed on this day in 1917. He was a British writer of English poetry and prose. He is sometimes considered a war poet, although few of his poems deal directly with his war experiences. He only started writing poetry at the age of 36, but by that time he had already been a prolific critic, biographer, nature writer and travel writer for 2 decades. In 1915, he enlisted in the British Army to fight in the First World War and was killed in action during the Battle of Arras in 1917, soon after he arrived in France.
और इसके साथ ही आज हम हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत की पुण्यतिथि है। शक्ति सामंत ने भारतीय सिनेमा में अपने अनोखे निर्देशन और सशक्त कहानी प्रस्तुति के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक के रूप में की और बाद में एक सफल निर्देशक और निर्माता बने। उनकी प्रमुख फिल्मों में आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम शामिल है। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म अमर प्रेम का ये फेमस डायलॉग।
तुम्हारी आंखों में आंसू?
मेरी आंखों में इम्पॉसिबल। अरे हाँ, ये आंसू बाहर कैसे आ गए?
जिसने हमेशा दूसरों के आंसू पोछे, उसके आंसू पोछने वाला कोई नहीं।
आने दो पुष्पा, आने दो, बड़ी मुश्किल से आए आंसू।
Yes, Shakti Samanta received Filmfare Awards for Best Film for Aradhana in 1969, Anurag in 1973, and Omanush in 1975, which was also made in Bengali, a language in which he made 6 films, including an Indo-Bangladesh joint production in 1984. Let's listen in to a medley of his hit songs.
पल में अपनी यारी
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को।
नमस्कार।